नमस्कार भारत, तारीख 12 जून, दिन शुक्रवार, मैं हूं नितिन श्रीवास्तव। जर्मन विंग्स विमान हादसे की होगी दोबारा जांच, हत्या का मामला हो सकता है दर्ज। पाकिस्तान और भारत के बीच तीखे बयानों का स्वर हुआ तेज। भारत ने बाल मजदूरी के कानून में होने वाले बदलाव का कैसा होगा असर, और बात होगी एक ऐसे गांव की जिसमें शराबखोरी के चलते बढ़ रही हैं विधवाएं।
अगर कोई कहता है कि गोली मार देगा, ये करेगा, पर उससे भी वो नहीं डरती, कहती है कि हमें गोली मार दे, हमें कोई डर नहीं, क्योंकि ऐसे भी तो हम बर्बाद हो रहे हैं।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार फैसल मोहम्मद अली से। पिछले साल मार्च में हुए जर्मन विंग्स विमान हादसे में एक नई जांच शुरू की गई है। पायलट आंद्रेस लुबिट्स का इलाज कर रहे काफी डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि की है कि वो विमान उड़ाने के काबिल नहीं थे। पायलट लुबिट्स ने विमान को फ्रांस के आल्प्स पहाड़ से जानबूझकर टकरा दिया था, जिसमें विमान में सवार सभी 150 लोगों की मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने जर्मनी में लागू मरीज के प्राइवेसी अधिकार की वजह से पायलट के स्वास्थ्य से संबंधित बातें किसी को नहीं बताई थी। एक अमरीकी अदालत ने कहा है कि एक काले बालक की मौत के मामले में 2 पुलिस ऑफिसरों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। हत्या का यह मामला पिछले साल नवंबर में ओहायो के क्लीवलैंड में हुआ था। पुलिस अधिकारी खेल के एक मैदान में पहुंचे थे, जहां तामीर रईस नाम के 12 साल के बच्चे के पास एक खिलौने वाली बंदूक पड़ी थी। बच्चे ने जैसे ही खिलौने वाली बंदूक उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पुलिस वालों ने उसे गोली मार दी। हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं अमेरिका में हुई हैं जिसमें गोरे पुलिस वालों ने काले व्यक्तियों पर फायरिंग की है। बोको हराम के खिलाफ कार्रवाई की रणनीति तैयार करने को बुलाई गई 2 दिनों की बैठक नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में खत्म हो गई है। बैठक में शामिल पश्चिमी अफ्रीका के 4 देशों चाद, नाइजेर, कैमरून और बेनिन इस बात के लिए राजी हो गए कि बोको हराम से लड़ने के लिए जो टास्क फोर्स तैयार हुई है उसका नेतृत्व नाइजीरिया करेगा। पहले ये देश बारी बारी से फोर्स का नेतृत्व करना चाहते थे, लेकिन नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी का कहना था, ऐसा करने से लड़ाई कमज़ोर हो जाएगी क्योंकि उग्रवादी अपनी रणनीति तेज़ी से बदलने में माहिर है। हो सकता है कि इस प्रक्रिया की मांग करते वक्त इसका इरादा वो ना हो, लेकिन होगा यही, नाइजीरिया के राष्ट्रपति के शब्द। पाकिस्तान ने स्वयंसेवी संस्था सेव द चिल्ड्रन से मुल्क में अपना कामकाज बंद करने को कहा है और हुक्म दिया है कि उसके विदेशी स्टाफ 15 दिनों के अंदर मुल्क छोड़ दें। सरकार की ओर से जारी एक बयान में संस्था पर पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। साल 2012 में पाकिस्तान ने सेव द चिल्ड्रन और डॉक्टर शाहिद आफरीदी में संबंध होने का इल्ज़ाम भी लगाया था। ओसामा बिन लादन वाले ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने आफरीदी पर CIA के लिए काम करने का आरोप लगाया था। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफसंजानी के बेटे को 10 साल की जेल की सजा हो गई है। एक अपीली अदालत ने सुरक्षा और वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में उनकी सजा बरकरार रखी है। रफसंजानी का परिवार 2009 के विवादित चुनाव के बाद जांच के दायरे में आया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव सुन रहे हैं। आपके साथ मैं हूं नितिन श्रीवास्तव। कार्यक्रम की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। फ्रांसीसी जांचकर्ताओं ने कहा है कि वो इसी वर्ष मार्च महीने में हुई जर्मन विंग्स विमान दुर्घटना की जांच दोबारा करने जा रहे हैं। इस हादसे में 150 लोगों की मौत हो गई थी। ये जांच पायलट आंद्रेस लुबिट्स के कुछ डॉक्टरों के उस बयान के बाद शुरू की जा रही है, जिसमें चिकित्सकों ने कहा कि उन्हें लगता था कि लुबिट्स विमान उड़ाने के लिए फिट ही नहीं थे। दुर्घटना के बाद ये बात सामने आई थी कि पायलट ने विमान को जानबूझकर पहाड़ की एक चोटी से टकरा दिया था। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए फैसल मोहम्मद अली से।
अभियोग पक्ष के वकील ब्राइस रॉबिन्स ने कहा कि एक प्राथमिक जांच की शुरुआत की जा रही है ताकि ये देखा जा सके कि क्या इसमें हत्या का मुकदमा दाखिल किया जा सकता है। रॉबिन का कहना था कि पायलट आंद्रेस लुबिट्स ने दुर्घटना के पहले एक महीने में 7 डॉक्टरों से अपना चेकअप करवाया था। इनमें एक जनरल फिजिशियन थे, जबकि 2 मनोचिकित्सक और 3 आंखों की बीमारी के विशेषज्ञ। जांचकर्ता का कहना था कि पायलट लुबिट्स आंखों की रोशनी के कारण काफ़ी परेशान थे। उन्हें लगता था कि उनकी आँखों के सामने तेज़ रोशनी चमकती है और उन्हें कुछ चीज़ें अंधेरे में डूबी हुई दिखती थीं। दुर्घटना के एक हफ्ते पहले उन्होंने एक डॉक्टर से कहा कि वो रात में सिर्फ 2 घंटे सो पाते हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अंधे हो रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों को ऐसा नहीं लगा कि उनकी आंखों की रोशनी जा रही थी और उनके समझ में आया कि इसकी वजह कोई मनोवैज्ञानिक दबाव हो सकता है। लेकिन किसी भी डॉक्टर ने पायलट की कंपनी को इन सब बातों के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो प्राइवेसी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। जर्मनी के कानून के मुताबिक डॉक्टर और मरीज के बीच की बात को किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता है। अभियोग पक्ष के वकील ब्राइस रॉबिन ने डॉक्टरों से पायलट आंद्रेस लुबिट्स की बातचीत का संक्षिप्त विवरण कुछ यूं दिया।
Et alors même que certains ont reconnu lorsqu'ils ont été entendus,
उसने उन लोगों पर यह प्रभाव छोड़ा कि वो मनोवैज्ञानिक तौर पर अस्थिर है, और उनमें से कुछ लोगों ने जब पायलट की बात सुनी तो उन्हें लगा कि वो विमान उड़ाने के काबिल नहीं है। दुर्भाग्य से इन बातों की सूचना किसी को नहीं दी गई, क्योंकि ये मेडिकल सीक्रेसी कानून के खिलाफ होता। इस मामले में 2011 के एक नियम पर ध्यान देने की जरूरत है जो यूरोप में लागू होता है। हादसे की जांच कर रहे ब्राइस रॉबिन के शब्द। रॉबिन का कहना था कि इस बात में कोई शक नहीं रह गया है कि पायलट आंद्रेस लुबिट्स ने जानबूझकर विमान को फ्रांस की आल्प्स पहाड़ से टकरा दिया था। हालांकि फ्रांस ने हादसे की जांच फिर से शुरू कर दी है, लेकिन अभी ये साफ नहीं हो पा रहा है कि हत्या का मामला किसके खिलाफ दाखिल किया जाएगा।
अब बात 2 पड़ोसी मुल्कों भारत और पाकिस्तान की। पिछले कुछ दिनों में परस्पर विरोधी बयानों की झड़ी इन दोनों के बीच कुछ ऐसी लगी है कि अब गंभीर सी होती दिख रही है। हाल ही में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने अपने एक भाषण में पाकिस्तान का जिक्र कुछ यूं किया था।
भारत के पास 90,000 सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में थे, लेकिन यह हिंदुस्तान का चरित्र देखिए, हिंदुस्तान की सेना का चरित्र देखिए। हमने बांग्लादेश के विकास की चिंता की, बांग्लादेश के स्वाभिमान की चिंता की, बांग्लादेश की धरती का उपयोग हमने पाकिस्तान पर गोलियां चलाने के लिए नहीं किया।
इसके बाद ही म्यांमार में चरमपंथियों के खिलाफ हुई एक गोपनीय कार्रवाई का दम भरा था भारतीय सेना और कुछ मंत्रियों ने। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने थोड़ा आगे बढ़कर पड़ोसी देशों को एक तरह से दबे स्वर में चेतावनी भी दे डाली थी। बहरहाल अब पाकिस्तान की संसद में भी मोदी के बांग्लादेश में दिए गए और दूसरे बयानों की खासी आलोचना हो रही है। खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारतीय नेतृत्व को गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। बहरहाल हकीकत यह भी है कि इन दोनों सरकारों ने पिछले एक वर्ष के भीतर आपसी संबंध बेहतर करने की भी बात कई दफा दोहराई है। आखिर सच क्या है? दिव्य आर्य ने यही सवाल पूछा वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जावेद नकवी से।
यहाँ से किसी ने तूतू मैमे कर दी, वहां से 2-4 लोगों ने और बढ़ के तूतू मैमे कर दी। लगता ही नहीं कि ये दो मुल्क जिम्मेदार मुल्क है, और खास तौर से न्यूक्लियर जो डायमेंशन है उसका, उसको देख के तो और बोटी कांपती है। क्योंकि 2002 में मई का महीना था, आपको याद होगा, जब ये इन्होंने तो फौजें दौड़ा दी थी। हुआ कुछ नहीं सिवाय इसके कि हिंदुस्तान के अपने ही फौजी और अपने ही सुरंगों पे गिर गिर के हलाक हुए, और कितना पैसा कितना जाया हुआ उसमें, कितना लोगों को दहशत हुई। हुआ कुछ नहीं और इसका शुक्र मनाना चाहिए, लेकिन ये इस तरह की ब्रिंकमैनशिप मैंने तो कहीं नहीं देखी। चाहे मेरे ख्याल से नॉर्थ कोरिया शायद इस तरह की करता होगा हरकत, उसको हम गैर जिम्मेदार कहते हैं। तो जब यहाँ पे ये तू-तू मैं होती है हिंदुस्तान की तरफ से हो तो, या पाकिस्तान की तरफ से हो, जैसे मुशर्रफ साहब ने कह दिया कि शबरात के लिए नहीं रखे हमने एटम बम, तो इसके मतलब ये है कि हम इस्तेमाल करने के लिए रखे हुए हैं।
पर दोनों प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, वो तो बहुत ही जिम्मेदार हैं।
नहीं, कहाँ है अब बताइए ना कि इसमें मैं इस वक्त नवाज शरीफ की तरफ से तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कम से कम उनके यहाँ एक पॉलिटिकल कंसेंसस था, अभी तक है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब वो आए और यहाँ उसमें आपको याद होगा इनके मोदी जी के इनॉग्रेशन में, उस वक्त उन्होंने एक बहुत ही स्क्रूपुलसली एक बात की थी कि हुर्रियत वालों से नहीं मिले मसलन, जो कि एक रूटीन तरीका था, जो भी डिग्निटरी आता था पाकिस्तान से वो करता था ताकि यहाँ दिल आजारी ना हो, यहाँ इनकी इनका दिल ना दुखे या नाराज ना हो जाए। तो एक किस्म का एक जो जो रीजनेबल एग्रीबल डिप्लोमेटिक पॉस्चर्स होते हैं वो लिए गए और इस बात का इजहार भी किया गया। लेकिन यहाँ एक के बाद एक, ये नहीं तो वो नहीं, फिर उसके बाद ये जब आपने बात कर ली किसी से बूढ़े मियाँ से कश्मीर के, लिहाजा हम बात ही नहीं करेंगे आपसे, जबकि तो ये हिंदुस्तान की तरफ से मेरे ख्याल से एक, क्योंकि सरकार जो है एक दक्षिणपंथी मसल फ्लेक्सिंग हुकूमत जो एक जमाने में पाकिस्तान में हुआ करती थी, आज वहां पे एक इलेक्टेड डेमोक्रेसी, ये जैसे कि गोलपोस्ट बदल गए हैं दो मुल्कों के बीच में। एक जमाना था पाकिस्तान से गालम गलौज होती थी और हम बिल्कुल सुकूत से बिल्कुल बैठे रहते थे, लेकिन अब ये हो गया कि हमारी तरफ से ये इस किस्म की जुमलेबाजियां होती हैं जो कि शोभा भी नहीं देती हैं। ये मिर्ची लगी पाकिस्तान, ये कौन सी जुबान है?
आपने साल 2002 की बात की थी और आपने अभी भी कहा कि जुबान इतनी कड़वी हुई है, तो क्या कुछ इसके और बढ़ने की के आसार लगते हैं आपको?
अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है।
भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे वाक युद्ध पर ये थे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जावेद नकवी। इस बीच भारत सरकार ने बाल मजदूरी के कानून में कुछ विवादास्पद बदलाव लाने का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूल के बाद परिवार द्वारा चलाए जा रहे कारोबार में काम करने दिया जाएगा। सरकार के मुताबिक इससे गरीब परिवार अपना घर चला सकेंगे और बच्चों को हुनर सीखने का मौका भी मिलेगा। पर आलोचकों के मुताबिक इस कानून की वजह से हजारों बच्चे स्कूल जाना छोड़ देंगे। बाल दिवस पर सुनिए विशेष रिपोर्ट दिव्या आर्य की आवाज में।
घरों से इकट्ठा किया गया कूड़ा जमा होता है सड़क किनारे बने ऐसे बड़े कूड़ा घरों में, और इनकी पैनी दुर्गंध के बीच काम कर रहे हैं कई छोटे बच्चे। सड़ते खाने, प्लास्टिक वगैरह के बीच ये बच्चे वो सामान ढूंढ रहे हैं जो रिसाइकल हो सके या बिक सके। इन्हीं में से एक है 10 साल का साहिल शेख।
मैं सुबह 5 बजे काम पर निकलता हूँ और रात 10 बजे घर लौटता हूँ। दिन भर कूड़ा बीनता हूँ। मुझे पापा के साथ काम करना पड़ता है क्योंकि वो अकेले नहीं संभाल सकते, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
साहिल की माँ साहिनूर से जब पूछा कि अपने छोटे बेटे से काम क्यों कराती हैं, तो बोली,
कष्ट है ना माँ, छेले निकास के लिए माँ का तो कष्ट है।
मुझे अपने बच्चे से काम करवाने में दिल टूटता है क्योंकि आखिर मैं उसकी माँ हूँ, पर हम गरीब हैं, काम करते हैं तभी खा पाते हैं, वरना पेट भरने के लिए पैसा कैसे मिले।
भारत के मौजूदा कानून के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है, यानी साहिल से काम कराने के लिए सजा हो सकती है, पर बदले हुए कानून में यही वैध हो जाएगा। सरकार के प्रस्तावित बदलाव के तहत बच्चों को स्कूल के बाद परिवार के साथ या पारिवारिक कारोबार में काम करने की इजाज़त होगी। सरकार के मुताबिक इससे बच्चों को छोटी उम्र में ही हुनर सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रही संस्थाएं इसके सख्त खिलाफ हैं। आकांक्षा चाइल्ड रिलीफ एंड यू यानी क्राय के साथ काम करती हैं।
हमें स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी, जाके खुश नहीं होते थे, हम लोग आते थे बार बार बुलाने के लिए, बच्चे एक बच्चा दो बच्चा आता था, मम्मी पापा वहाँ से भी पकड़ के ले आते थे वापस कि ये काम करेगा हमारे यहाँ। बच्चों का हम लोगों के और स्कूल से जुड़ाव कम हो जाएगा, वो लोग काम की तरफ ज़्यादा, क्योंकि इन लोगों का यही काम से ही जो पैसा है, माँ बाप अपने साथ अपने बच्चों को भी काम कराते हैं, उन लोगों को लगता है साथ में बच्चा काम करेगा तो हमें 100 रुपया 50 रुपया ज़्यादा ही मिलेगा, और ये कानून इस तरह का आ गया, माँ बाप को छूट मिल गई है ये सब करने की।
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी भारत में बाल मजदूरी से जुड़े मुद्दों पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। नए कानून के बारे में उनके मन में भी कई शंकाएं हैं।
काम सीखने में मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि काम सीखने से आगे उनकी स्किल्स, उनकी अपनी चीज़ें बढ़ती हैं, उनके अपने अंदर की प्रतिभा बढ़ती है। लेकिन मेरी कुछ गंभीर आपत्तियां भी हैं। बाल मजदूरी की परिभाषा को स्पष्ट किया जाए, जो मालिक और काम करने वाले मजदूर का रिश्ता है वो साफ होना चाहिए, और ये रिश्ता बच्चों के मामले में कतई लागू नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर बाल मजदूरी की परिभाषा आ जाएगी तो मजदूरी किसी के साथ भी नहीं कर सकते बच्चे।
आखिर में सवाल कानून के सही तरीके से लागू होने पर आकर सिमट जाता है। मौजूदा कानून में बाल मजदूरी पर रोक के बावजूद भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा बाल मजदूर हैं। तो क्या सरकार नए कानून का गलत इस्तेमाल रोक पाएगी?
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। फैसल मोहम्मद अली साहब, जो है जनसत्ता अखबार सबसे ऊपर आपके पास है आज हाथ में, और आपके बगल में नवभारत टाइम्स भी दबा रखा है। क्या कह रहे हैं अखबार आज?
अखबार कह रहे हैं कि भारत के नए तेवर से खौफ। जनसत्ता जो जिसका नाम आपने
यार लिया, हमने जो खबर ली थी कार्यक्रम में, भारत पाकिस्तान,
भारत और पाकिस्तान के बीच जो म्यांमार के बाद जो सारी बहस जो शुरू हुई है, उसमें पर्रिकर जो भारत के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया है कि भारत के नए तेवर से खौफजदा है पाकिस्तान। हिंदुस्तान कह रहा है कि आतंक पर भारत के रुख से पाक में हड़कंप, और उसमें नवाज शरीफ का स्टेटमेंट भी है कि भारतीय नेताओं के बयान गैर जिम्मेदाराना और अविवेकपूर्ण है, ऐसे बयान दोनों देशों के को क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लक्ष्यों से दूर रखते हैं
जी।
और दैनिक भास्कर एक हेडलाइन दे रहा है, सेना को मिली किसी भी देश में सर्जिकल स्ट्राइक की छूट, और वो कह रहा है कि एक गृह मंत्रालय की बैठक हुई है, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, खुफिया एजेंसियां।
यानी फैसल साहब, ये अखबार ये कहना चाह रहा है कि
सेना कहीं भी किसी भी देश में जाके स्ट्राइक कर पाएंगे, वो इस बात की वो छूट मिलेगी। हालांकि ये काफी विवादास्पद बयान है, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने जो इस पे वाद विवाद हो रहा है, उस पे जो परवेज मुशर्रफ जो वहाँ के तो उन्होंने बयान दिया है कि क्या हमने परमाणु हथियार शबे बारात पर इस्तेमाल के लिए रखा है, क्योंकि पाकिस्तान ये बार बार कह रहा है कि हमारे पास भी परमाणु हथियार है, हम तुमसे जो है इस बात पे निपट सकते हैं। लेकिन इन सब पे जो है वो पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन अखबार के हेडलाइन में एक्सक्लूसिव खबर में कहा गया है कि म्यांमार में जिस हमले की बात कही जा रही है, उसमें महज 7 लोगों की मौत हुई है जो इंसर्जेंट्स थे, और लेस देन डजन जो है इंजर्ड हुए हैं। इन्होंने वहाँ के लोगों के हवाले से और जो आर्मी के लोगों से बात करने के बाद ये एक्सक्लूसिव खबर दी है
जी।
अब बात करते हैं दूसरे खबरों की तरफ, ध्यान देते हैं। एक तो खबर है कि तोमर साहब जो हैं, जो कि पूर्व कानून मंत्री हैं,
अपनी डिग्री के लिए आजकल काफ़ी परेशान चल रहे हैं,
अपनी डिग्री के लिए परेशान हैं। पुलिस के 4 दिनों की हिरासत में, रिमांड में, और कल तक जो है वो फैज़ाबाद में थे, आज शायद उनको मुंगेर ले जाया जा सकता है
जी।
ये बात हो रही है, तो उस पर जो है ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर जो है कुछ RTI का मामला जो उन्होंने बताया था, उसमें भी उनकी परेशानी हो सकती है। एक दिलचस्प खबर ये कि अमीर क्रिकेटर धोनी शास्त्री को मिलेंगे 7 करोड़। एक जगह खबर आई कि धोनी जो हैं वो दुनिया के जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले जो स्पोर्ट्समैन हैं,
उसमें 100 खिलाड़ी जो एकमात्र भारतीय,
उनमें से जो हैं वो एकमात्र भारतीय जो हैं वो ये हैं। और एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि तिहार में जो गैंग वॉर चल रहा है, उसमें एक और जो है प्रिजनर, उसकी मौत हो गई है। था टाइम्स ऑफ इंडिया की जो मेन हेडलाइन है वो बिल्कुल अलग है, कि हु विल क्लियर दिस स्टिंकिंग मेस, केजरीवाल और जंग, कि यहाँ जो कर्मचारी जो हैं वो सफाई कर्मचारी जो हैं उनकी हड़ताल फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि उनको काफ़ी दिनों से तनख्वाह नहीं मिली है। तो कह रहा है कि आखिरकार ये जंग साहब साफ करेंगे या केजरीवाल साहब साथ करेंगे। और अंतिम में ये बताना चाहूँगा कि श्लोक को जो लेके हंगामा हो रहा है कि ये जो योग जो होने वाला है 21 जून को, उसमें कहीं से ये आया है कि श्लोक की बजाय अल्लाह बोल सकेंगे मुस्लिम, इस पर ये विवाद जो मचा हुआ है कि मुस्लिम।
चलिए, थोड़ी राहत भरी खबर है कुछ लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब। रुक करते हैं बिहार का, जहाँ पर नीतीश सरकार अपनी शराब नीति को लेकर हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। सरकार की शराब नीति राजस्व केंद्रित रही है, लेकिन इसके चलते कई घरों में अंधेरा फैल गया है। बिहार के सासाराम में करवंदिया एक ऐसा गांव है जहां शराबखोरी के चलते हर 5 महिला में से एक विधवा बताई जाती है। हालांकि अपना घर बचाने के लिए महिलाएं अब संघर्ष कर रही हैं, लेकिन तस्वीर अभी भी बहुत बदहाल है। एक रिपोर्ट सुनिए सीटू तिवारी से।
सासाराम के करवंदिया गांव के माहौल में मातमी सन्नाटा घुला हुआ सा रहता है। करवंदिया में 500 महिला वोटर हैं, जिसमें से 100 से भी ज्यादा विधवा हैं। कैमूर पहाड़ी के पास बसे इस गांव में पहले लोग अपनी लड़कियों की शादी करने को बेताब रहते थे, लेकिन अब इस गांव को विधवाओं का देश कहा जाता है। गांव की समुन्दर देवी बता रही हैं कि अब अगुआ उनके गांव में शादी के रिश्ते लेकर नहीं आते।
शादी होखे में इतना था कहलन अगुआ सगुआ कि मैंने
शादी होने में नाते रिश्तेदार कहते हैं कि वो शराब का देश है, तो वहाँ कैसे शादी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हमारी लड़कियाँ भी तो विधवा हो जाएंगी, तो हम बड़ी मुश्किल से बातें छिपाकर झूठ बोलकर अपने लड़कों की शादी कर पाते हैं।
शराब के नशे, पत्थर के काम से निकलने वाली धूल और भुखमरी के चलते गांव के पुरुषों की बड़ी तादाद में मौत हो चुकी है। साथ ही शराब का नशा अपने साथ कई सामाजिक बुराइयां भी लेकर आया। औरतों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ी तो लड़कियों को घर वालों ने स्कूल भेजना बंद कर दिया। परेशान महिलाओं ने जब बात हद से बढ़ती देखी तो इसका विरोध करना शुरू किया। गांव की लौरी और मीरा देवी गांव के हालात के बारे में बता रही हैं।
दूसरा ठेके आदमी आके जगारा गलाउज माई बहने जे बाड़ी बैठल बाड़ी खड़े लोग पे सापो करे लागत रहे।
गांव में शराब होने से औरतों के साथ दुर्व्यवहार बढ़ गया था। माँ बहन बहुएं जब शौच के लिए मैदान जाती थीं तो उनके साथ शराबी बदतमीजी करते थे और विरोध करने पर हंगामा करने पर उतारू हो जाते थे। ऐसे में जब अत्याचार बढ़ा तो हमें घर से बाहर निकलना पड़ा और हमने तय किया कि गांव में हम दारू नहीं आने देंगे।
पिया के मरनी जा गांव के शराब कंट्रोल के नहीं जा, गांव के भाई बाप के कंट्रोल के नहीं जा।
हमने शराबियों की पिटाई कर करके शराब पर लगाम लगाने की कोशिश की। लोग पीते शराब बाहर थे, लेकिन उनकी नजर घर के अंदर बहू बेटियों पर रहती थी।
बता दें 2013 से अब तक कई बार भट्टियों से शराब की बरामदगी करके उत्पाद विभाग को सौंपी गई, लेकिन शराब के मुद्दे पर महिलाओं के साथ काम कर रहे प्रगतिशील महिला मंच का आरोप है कि घूम फिर कर ये शराब फिर से बाजार में पहुंच जाती है। मंच का आरोप है कि स्थानीय थाने का भी यही रवैया है। हालांकि महिलाओं ने अपने संघर्ष के बलबूते गांव में बाहर से आने वाली शराब पर रोक लगाई है, लेकिन गांव के अंदर लगी भट्टियों पर अभी रोक नहीं लगवा पाई है। प्रगतिशील महिला मंच की अध्यक्ष सुनीता बताती हैं।
मैंने हर तरह से लड़ने के लिए तैयार है। वो कहती हैं कि हम तो ऐसे भी घुट घुट करके मर रहे हैं, चाहे जो भी हो हम इसके लिए मैंने गोली भी हमको खाना पड़े। अगर कोई कहता है कि गोली मार देगा ये करेगा, पर उससे भी वो नहीं डरती। कहती हैं कि हमें गोली मार दे, हमें कोई डर नहीं, क्योंकि ऐसे भी तो हम बर्बाद हो रहे हैं।
सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक साल 2013-14 में सासाराम से 1,17,00,00,000 का राजस्व सरकार को मिला है। ये आंकड़ा सिर्फ वैध शराब बिक्री का है। महिला आंदोलनकारियों का कहना है कि शराब के इस कारोबार से मिलने वाले मोटे राजस्व के चलते ही सरकार इस कारोबार पर नकेल नहीं कसती। सीटू तिवारी, करवंदिया, सासाराम।
और अब समय है खेल समाचारों को सुनने का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत और बांग्लादेश के बीच फतुल्ला में खेले जा रहे टेस्ट मैच का दूसरा दिन कल बारिश में धुल गया। कल एक भी गेंद नहीं की जा सकी और दोनों टीमें पेवेलियन में ही बैठी रह गई और स्कोरबोर्ड वहीं टंगा रहा जहां पहले दिन था। भारत बिना किसी नुकसान के 239 रन, शिखर धवन नाबाद हैं 150 रन बनाकर और मुरली विजय 89 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं। देखना है कि क्या आज खेल के तीसरे दिन मौसम दोनों टीमों पर मेहरबान होता है या नहीं। उधर टेनिस के कोर्ट पर पुरुष युगल वर्ग में टॉप शेल्फ ओपन में दूसरी वरीयता हासिल भारत के लिएंडर पेस और उनके जोड़ीदार कनाडा के डेनियल नेस्टर का अभियान क्वार्टर फाइनल में ही समाप्त हो गया। उन्हें फ्रांस के पियरे हर्बर्ट और निकोलस माहूत की जोड़ी ने 6-4, 7-6 से मात दी। वहीं बैडमिंटन के कोर्ट पर भारत की साइना नेहवाल ने पिछले दिनों अपनी शीर्ष वरीयता गंवा दी और अब वे विश्व वरीयता में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं, जबकि स्पेन की कैरोलिना मरीन पहले स्थान पर हैं, चीन की जू रुई ली तीसरे और चीन ताइपे की ताइजू युंग चौथे स्थान पर हैं। वहीं पुरुष एकल वर्ग में पिछले दिनों इंडोनेशिया ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले भारत के पी कश्यप एक बार फिर शीर्ष 10 खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। भारत के ही के श्रीकांत अपने शानदार खेल के दम पर तीसरे पायदान पर हैं, जबकि चीन के चेन लॉन्ग पहले और डेनमार्क के यानो योर्गेंसन दूसरे स्थान पर हैं। पी कश्यप अब अपने प्रदर्शन में निरंतरता चाहते हैं।
अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, मुझे बस कंसिस्टेंट रहना है हमेशा। सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं टॉप पे रहने के लिए, तो ये जो प्लेयर्स आपने मेंशन किए हैं बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत ही कंसिस्टेंट लेवल पे खेल रहे हैं हमेशा। तो मुझे नंबर वन पहुंचना है तो सबको कंसिस्टेंटली पूरा साल भर मारना पड़ेगा, तो इसी के कोशिश में हूं मैं।
उधर बेंगलोर में कल ओमान ने साल 2018 फुटबॉल विश्व कप क्वालिफायर्स के दूसरे दौर के मुकाबले में भारत को 2-1 से मात दी। ओमान के लिए कासिम सैद और इमादल हौसनी ने गोल किए, जबकि भारत के लिए एकमात्र गोल सुनील छेत्री ने किया। ओमान से हारने के बाद भारत के अभियान का अब क्या होगा, बताया इसी मुकाबले की कमेंट्री कर रहे जाने माने फुटबॉल विश्लेषक गौस मोहम्मद ने।
शुरुआत है और अभी भारत को गुआम से खेलना, तुर्कमेनिस्तान से खेलना है, ईरान से खेलना है। गुआम ने तुर्कमेनिस्तान को 1-0 से हरा दिया है, तो अगला मैच भारत का जो है गुआम से है, जो कड़ी चेतावनी गुआम ने दे दी है कि उनको इस ग्रुप में कमजोर ना आका जाए। वो बहुत गंभीर टीम है और जिस तरह तुर्कमेनिस्तान को उन्होंने हराया है उससे भारत के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी हो गई है। भारत को अगला मैच जीतना जरूरी है,
तो भारत की आगे की राह आसान नहीं।
अब आइए जानते हैं कि आज दिन में कौन सी प्रमुख खबरों पर रहेगी नजर।
फर्जी डिग्री के मामले में पुलिस ने दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर से अपनी पूछताछ जारी रखी है। पिछले दो दिनों से पुलिस ने उन्हें फैजाबाद में रखा था, जहां उनसे उनकी स्नातक की डिग्री की सत्यता को लेकर सवाल जवाब जारी रहे। दिल्ली पुलिस उन्हें बिहार के मुंगेर ले जा सकती है। तोमर के दावे के मुताबिक उन्होंने तिलका मांझी विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की थी। दिल्ली के पूर्व मंत्री 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर है, उन्हें डिग्री पर उठे विवाद के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। दिल्ली से ही जुड़े एक दूसरे मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है। भारती की पत्नी लिपिका ने कल पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में दिल्ली पुलिस की विमेन सेल जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बाद में लिपिका को चोटों की जांच के लिए दिल्ली के एक अस्पताल में ले जाया गया था। रूपर्ट मर्डोक 21st सेंचुरी फॉक्स के मुख्य कार्यकारी का पदभार छोड़ने जा रहे हैं और ये जिम्मेदारी वो अपने बेटे जेम्स को सौंपेंगे। ये खबर कंपनी की अगले हफ्ते होने वाली बोर्ड मीटिंग के पहले लीक हो गई है। जेम्स मर्डोक का नाम ब्रिटेन के न्यूज ऑफ द वर्ल्ड अखबार और फोन हैकिंग के मामले में काफी उछाला गया था और कहा जा रहा था कि ये कंपनी में उत्तराधिकार के मामले पर असर डाल सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल फतेउल्लाह में जारी रहेगा। कल मैच में बारिश की वजह से बाधा आई थी। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत ने अब तक बिना विकेट गंवाए 239 रन बनाए हैं। भारत की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने शानदार पारी खेलते हुए पहले दिन ही 150 रन बना लिए थे। कप्तान के रूप में विराट कोहली का ये पहला आधिकारिक टेस्ट दौरा है।
आइए प्रमुख समाचारों के लिए एक बार फिर से चलते हैं फैसल मोहम्मद अली के पास।
پچھلے سال مارچ میں ہوئے جرمن ونگس ویمان حادثے میں ایک نئی جانچ شروع کی گئی ہے۔ پاکستان نے سوئم سیوی سنستھا سیو دا چلڈرن سے ملک میں اپنا کام کاج بند کرنے کو کہا اور حکم دیا کہ اس کے ودیشی اسٹاف 15 دنوں کے اندر ملک چھوڑ دیں۔ بوکو حرام کے خلاف کاروائی کی رڑنیتی تیار کرنے کو بلائی گئی 2 دنوں کی بیٹھک نائجیریا کی راجدھانی ابوجا میں ختم ہو گئی ہے۔ ایک امریکی عدالت نے کہا ہے کہ ایک کالے بالک کی موت کے معاملے میں 2 پولیس آفیسر پر ہتیا کا مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ بی بی سی سماچار۔
تو بی بی سی ہندی کی اس پہلی سبھا نمسکار بھارت اس انک میں اتنا ہی۔ آج اسٹوڈیو سنبھال رہے تھے اجیت سارتھی۔ اب سے ٹھیک 1 گھنٹے بعد کارکرم وشو بھارتی میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے نتن شریواستو کو انومتی دیجیے۔